लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे धर्म शिक्षकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें ईश वचन की घोषणा करने के लिए बुलाया गया है, ताकि वे साहस एवं रचनात्मकता के साथ तथा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सुसमाचार के साक्षी बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत और समाचार। प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, कोरोना वायरस का बेहद संक्रमण ओमिक्रोन वेरिएंट विश्व के अनेक देशों में तेजी से फैल रहा है। 19 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट किए गए 55,51,314 मौतों सहित कोविड-19 के 33,26,17,707 पुष्ट मामले सामने आए हैं। 19 जनवरी 2022 तक कुल 9,97,15,02,663 टीके की खुराक दी जा चुकी है। यूएन एजेंसी के अनुसार डेल्टा की तुलना में ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमण कम गंभीर होता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनका अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए दो नई दवाइयों के प्रयोग की सिफारिश की है। इनमें बारीसिटनिव गंभीर रूप से बीमार मरीजों को दी जाएगी, जबकि सोट्रोविमाब कम गंभीर संक्रमण मामलों के उपचार के लिए है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौर।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले सप्ताह विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.5 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने जिनीवा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि किसी एक हफ्ते में संक्रमण मामलों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। महानिदेशक गेब्रियसिस कह रहे थे कि संक्रमण मामलों में तेज उछाल ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हो रहा है, जो कि हर देश में डेल्टा का स्थान लेता जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर महीने के बाद से एक सप्ताह के दौरान होने वाली मौतों का आंकड़ा स्थिर है और हर सप्ताह औसतन 48,000 मौतें हो रही हैं। सभी देशों में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, मगर ये आंकड़ा कोरोना वायरस की पिछली लहरों के स्तर पर नहीं है। संगठन का कहना है कि संभवतः इसकी वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम गंभीर होना, टीकाकरण या फिर अतीत के संक्रमण से विकसित हुई प्रतिरोधक क्षमता है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख कह रहे थे कि एक बात स्पष्ट मानिए, डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन से कम गंभीर बीमारी होती है, मगर ये खतरनाक वायरस है, विशेष रूप से उनके लिए जिन्हें वैक्सीन की खुराक नहीं मिली है। इस बीच यूएन एजेंसी ने कोविड-19 के उपचार के लिए दो नई दवाओं के प्रयोग की सिफारिश की है। इनमें से एक दवा बेरिसिटिनिब गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए है। साथ ही कुछ मामलों में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा सोट्रोविमैब को उन मरीजों के लिए प्रयोग में लाए जाने की अनुशंसा की गई है जिन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने का जोखिम है।
कोविड-19 महामारी के व्यापक असर से उभरती अर्थव्यवस्था में पिछले साल में काफी हद तक सुधार दर्ज किया गया था, मगर इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि सुधार की रफ्तार पिछले साल के अंतिम दिनों में धीमी पड़ गई और अब वैश्विक आर्थिक विकास के रास्ते में विशाल अवरोध पैदा हो गया है। इसकी वजह कोविड-19 संक्रमण मामलों की नई लहरें, श्रम बाजार और सप्लाई चेन में दर्ज किया गया व्यवधान और मुद्रास्फीति के कारण बढ़ता दबाव बताई गई है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रतिष्ठा जैन।
रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल वैश्विक उत्पादन में 5.5% की बढ़ोतरी हुई, मगर 2022 में यह आंकड़ा 4% और 2023 में 3.5% तक सीमित रह जाने की आशंका है। पिछले वर्ष 2021 में उपभोक्ता खर्च में मजबूती और निवेश में बढ़ोतरी होने से पिछले 4 दशकों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखी गई थी। सामान आधारित व्यापार ने महामारी से पूर्व के स्तर को भी पार कर लिया था। इसके बावजूद हालात में सुधार की रफ्तार 2021 के अंतिम दिनों में धीमी हो गई, विशेष रूप से चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ में। रिपोर्ट में इसकी वजह मौद्रिक एवं राजकोषीय स्फूर्ति प्रदान करने वाले उपायों का असर कम होना और सप्लाई चेन में मुश्किलों का उभरना बताया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनेक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बढ़ने से भी पुनर्बहाली के लिए जोखिम पैदा हो रहे हैं। अगले 2 सालों में और उसके बाद भी रोजगार की दर के महामारी से पहले के स्तर की तुलना में कम रहने की संभावना है। वैश्विक महामारी के कारण देशों के भीतर और उनके बीच विषमता की खाई और गहरी हुई है।
अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अफगानिस्तान में आम नागरिक आर्थिक तंगी में जी रहे हैं और उनके जीवन को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगान लोगों की सहायता करने की अपील की है। साथ ही तालिबान को सचेत किया है कि उन्हें बुनियादी स्वतंत्रताओं का सम्मान करना होगा। महासचिव गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नाम एक अपील जारी करते हुए कहा, तालिबान नेतृत्व में सभी महिलाओं और लड़कियों के बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में महिलाओं व लड़कियों की उपस्थिति कक्षाओं और कार्यालयों में नदारद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस अपील का स्तर विकट परिस्थितियों को परिलक्षित करता है। परिजनों को खाना खिलाने के लिए शिशुओं को बेचा जा रहा है। देश भर में आजीविका के साधन खत्म हो गए हैं। अंतोनियो गुटेरेस का कहना था,
फ्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड फ्रोजन एसेट्स आर अ लिटिल कॉम्बिनेशन फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान।
यूएन प्रमुख कह रहे थे कि कपकपा देने वाले तापमान और संपत्तियों का जब्त किया जाना अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक घातक मिश्रण है। ऐसे नियम व शर्तों को इस आपात स्थिति में स्थगित करना होगा जो लोगों की जिंदगियों व अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए धन का इस्तेमाल करने से रोकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता धनराशि का इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्र के कामगारों की वेतन अदायगी और अफगान संस्थानों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल, तालीम और अन्य आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने में मदद के लिए होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में इस वर्ष के दौरान मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए 2 दिन पहले मंगलवार को जिनेवा में लगभग 5 अरब डॉलर की सहायता राशि जुटाने की पुकार लगाई थी। मानवीय आपदा राहत मामलों के कार्यालय OCHA के मुखिया मार्टिन ग्रिफिथ्स ने ये अपील जारी करते हुए कहा,
दिस इज द लार्जेस्ट एवर अपील फॉर अ सिंगल कंट्री फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस।
मार्टिन ग्रिफिथ्स कह रहे थे कि किसी एक देश में मानवीय सहायता के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी धनराशि जुटाने की अपील है। ये एक अस्थायी उपाय है जिसकी सख्त जरूरत है। इस अपील के लिए धनराशि जुटाए बिना कोई भविष्य नहीं है, इसे करना ही होगा, अन्यथा लोग देश छोड़कर भागेंगे और बहुत तकलीफें होंगी।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार पदाधिकारियों ने जर्मनी के कोबलेज क्षेत्रीय उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार 13 जनवरी को सुनाए एक ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है, जिसमें सीरिया के एक पूर्व गुप्तचर अधिकारी 58 वर्षीय अनवर आर को प्रताड़ना, हत्याएं, स्वतंत्रताओं का हनन, बलात्कार, यौन हमले और लोगों को बंधक बनाने के अपराधों के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
सीरिया के इस पूर्व अधिकारी का नाम अनवर आर है, जिस पर राजधानी दमिश्क में वर्ष 2011 और 12 के बीच देश की गुप्तचर सेवा की अल खातिब शाखा में हजारों लोगों को प्रताड़ित किए जाने में शामिल होने के आरोप निर्धारित किए गए। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने कहा कि इस मुकदमे से उन अनगिनत सीरियाई लोगों की असहनीय तकलीफों पर फिर से अहम ध्यान केंद्रित हुआ है, जिन्हें बंदी गृहों में उत्पीड़न और अमानवीय बर्ताव का सामना करना पड़ा।
आप वाटिकन रेडियो से सामयिक लुकोपकारी चर्चा सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
Thank you.
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को वैटिकन में विश्वास और धर्म सिद्धांत संबंधी परम धर्म पीठीय धर्म संघ की पूर्णकालिक सभा में भाग लेने वाले सदस्यों को संबोधित कर विश्वास और नैतिकता पर कैथलिक कलीसिया के धर्म सिद्धांत की अखंडता को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने हेतु धर्म संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा प्रतिष्ठा, विवेक और विश्वास के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने विश्व पत्र फ्रतेली तूती के संदर्भ में कहा कि यह समय जो हमें वरदान स्वरूप मिला है, इसमें हम प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मान्यता देकर सबके भीतर भाईचारे की विश्वव्यापी आकांक्षा को पुनः जीवित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि भाईचारा ही वह मुकाम है जिसे सृष्टिकर्ता ईश्वर ने मानव जाति की यात्रा के लिए तय किया है, तो इसका प्रमुख मार्ग है प्रत्येक की प्रतिष्ठा को सम्मान देना। संत पापा ने कहा कि इतने सारे सामाजिक, राजनीतिक और यहां तक कि स्वास्थ्य तनावों से चिन्हित हमारे युग में, हालांकि दूसरे को एक अजनबी और दुश्मन के रूप में देखने का प्रलोभन बढ़ रहा है और व्यक्तियों को वास्तविक सम्मान से वंचित कर रहा है, हम सबका आह्वान किया जाता है कि हम प्रत्येक की प्रतिष्ठा को मान्यता प्रदान करें। उन्होंने कहा, प्रत्येक मनुष्य की गरिमा का एक आंतरिक चरित्र होता है जो व्यक्ति के गर्भाधान के क्षण से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक मान्य होता है। विवेक के गुण पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, आज पहले से कहीं अधिक इस बात की आवश्यकता है कि विश्वासी विवेक की कला सीखें। द्रुत गति से होते परिवर्तन के युग में एक ओर जहां विश्वासी स्वयं को नए और जटिल मुद्दों का सामना करते हुए पाते हैं, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिकता की आवश्यकता बढ़ जाती है जो सुसमाचार में अपने संदर्भ बिंदु को नहीं प्राप्त करती और जिसके लिए ईश्वर से ठोस चिन्ह की आवश्यकता रहा करती है। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा कि दुराचार से पीड़ित लोगों को सुरक्षा, पुनर्वास और सांत्वना देने के लिए परम धर्म पीठीय विश्वास और धर्म सिद्धांत संबंधी धर्म संघ जो प्रयास कर रहा है, वह अर्थ गर्भित है। अंत में विश्वास शब्द पर चिंतन प्रस्तुत कर संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि विश्वास और धर्म सिद्धांत संबंधी धर्म संघ का कार्य केवल विश्वास की रक्षा करना ही नहीं है, अपितु विश्वास को प्रोत्साहन देना भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि विश्वास के बिना दुनिया में विश्वासियों की उपस्थिति एक मानवीय और लोकोपकारी एजेंसी मात्र बनकर रह जाएगी। इसलिए विश्वास को हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति के कार्य और जीवन का प्राण होना चाहिए। जर्मनी के म्यूनिक शहर में गुरुवार को एक प्रेस सम्मेलन में म्यूनिक महाधर्म प्रांत में सन 1945 से लेकर 2019 तक हुए यौन दुराचारों की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें बताया गया कि 74 वर्षों के अंतराल में कम से कम 497 व्यक्ति यौन दुराचार के शिकार बने। यौन दुराचार पीड़ितों में 247 पुरुष और 182 महिलाएं शामिल हैं, जो दुराचार के समय 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले थे। म्यूनिक महाधर्म प्रांत ने एक वक्तव्य में बताया कि महाधर्म प्रांत प्रारंभिक जांच के बाद अगले 27 जनवरी को इस पर अपनी टिप्पणी प्रकाशित करेगा। इसी बीच वैटिकन से परम धर्म पीठीय प्रेस के निर्देशक मतेओ ब्रूनी ने पत्रकारों से कहा, परम धर्म पीठ का मानना है कि दस्तावेज पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए जिसकी सामग्री इस समय अज्ञात है। आगामी दिनों में इसके प्रकाशन के बाद परम धर्म पीठ सावधानी पूर्वक इसका पाठ कर विस्तृत परीक्षण में सक्षम होगी। उन्होंने कहा, नाबालिगों के खिलाफ पुरोहितों के दुराचारों के लिए शर्म और पश्चाताप की पुनरावृत्ति करते हुए परम धर्म पीठ सभी पीड़ितों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त करती और नाबालिगों की रक्षा और उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की पुष्टि करती है। रिपोर्ट में म्यूनिक के पूर्व महाधर्माधीश कार्डिनल जोसेफ रात्सिंगर अर्थात सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें का भी जिक्र है, जो 1977 से 1982 तक म्यूनिक के महाधर्माध्यक्ष रहे थे। कहा गया कि महाधर्माध्यक्ष पद पर रहे कार्डिनल रात्सिंगर ने दुराचारियों को दंडित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए थे। हालांकि यह भी कहा गया कि दुराचार की घटनाओं का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। म्यूनिक की एक कानून कंपनी द्वारा तैयार उक्त रिपोर्ट की प्रकाशना के बाद सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के व्यक्तिगत सचिव महाधर्माध्यक्ष गेंसवाइन ने पत्रकारों के समक्ष इस बात की पुष्टि की कि गुरुवार को रिपोर्ट के प्रकाशन तक संत पापा बेनेडिक्ट को उक्त रिपोर्ट का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अवश्य वे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा इस पर टीका करेंगे। अमेरिका की ओपन डोर्स इंटरनेशनल संस्था ने वर्ल्ड वाइड लिस्ट द्वारा प्रकाशित सूची में दर्शाया कि ख्रिस्तियों के खिलाफ उत्पीड़न विशेष रूप से एशियाई और अफ्रीकी देशों में बढ़ रहा है और यह कि कोविड-19 महामारी ने भेदभाव को और अधिक बढ़ा दिया है। ओपन डोर्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2021 के दौरान तमाम विश्व में ईसाइयों के खिलाफ उत्पीड़न की एक नई महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। 19 जनवरी को नीदरलैंड स्थित गैर सांप्रदायिक संगठन द्वारा वर्ल्ड वॉच लिस्ट 2022 प्रस्तुत की गई जो उन 50 देशों का जिक्र करती है जहां ख्रिस्तीय धर्मानुयायी अपने विश्वास के खातिर अत्यधिक उत्पीड़ित किए जाते हैं। 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक की अवधि तक किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि विशेष रूप से एशियाई और अफ्रीकी देशों में उत्पीड़न बढ़ रहा है और कोविड-19 महामारी ने भेदभाव को और अधिक बढ़ा दिया है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार विगत वर्ष 36 करोड़ से अधिक लोगों ने यानी विश्व के 7 में से एक व्यक्ति ने अपने देश में उत्पीड़न और भेदभाव सहा। इस अवधि के दौरान 5,898 ख्रिस्तियों को मार डाला गया, 5,110 गिरजाघरों पर हमले किए गए अथवा उन्हें बंद करवा दिया गया, 6,175 ख्रिस्तियों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया तथा 3,829 ख्रिस्तानुयायियों का अपहरण कर लिया गया। मध्य प्रदेश के ईसाई नेताओं ने हिंदू समर्थक राष्ट्रवादी दलों से सुरक्षा के लिए भारत के शीर्ष संवैधानिक अधिकारियों से अपील की है। विभिन्न ख्रिस्तीय संप्रदायों के नेताओं ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को संबोधित एक ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद और इसकी युवा शाखा बजरंग दल जैसे हिंदू समर्थक संगठनों पर उनके धर्म पालन के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया। ज्ञापन में कहा गया कि हिंदू राष्ट्रवादी दल ख्रिस्तीय पुरोहितों और पादरियों के खिलाफ धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाते, उनके विरुद्ध झूठा सोशल मीडिया प्रचार करते तथा उनके खिलाफ झूठी पुलिस शिकायत दर्ज कर उन्हें तंग करते हैं। ख्रिस्तीय संप्रदायों के नेताओं ने पुलिस और जिला अधिकारियों पर भी राष्ट्रवादी दलों की तरफदारी का आरोप लगाया और ख्रिस्तियों की सुरक्षा की मांग की। इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।